श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव महामहोत्सव पर सभी अतिथियों का, भक्तों का स्वागत है। श्रीमती राधा रानी की श्री प्रभुपाद जी और गुरुदेव की असीम कृपा से हम उस उत्सव को मना रहे हैं, वरना बद्ध पतित जीव की क्या योग्यता है कि वो राधा रानी का जन्म उत्सव मनाए। लेकिन ये उनकी अपार करुणा है जिसकी वजह से हम इतने निकट से श्री श्री राधा मदन गोपाल जी का दर्शन कर पा रहे हैं और उनके दर्शन से अपने आप को पुनीत कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण करते ही सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। राधा रानी के दरबार में कोई दुखी नहीं रहता है। लाडली जी अद्भुत तेरा नजारा है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। इस दुनिया में हम बहुत सारे लेते हैं, धन का सहारा सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, बल का सहारा, विद्या का सहारा, हमारे प्रभाव का सहारा, हमारे स्थावर और जंगम प्रॉपर्टी का सहारा, अच्छी सेहत का सहारा, लेकिन समय के साथ सब सहारे टूट जाते हैं और केवल एक ही सहारा बच जाता है, वह है राधा मदन गोपाल जी का, क्योंकि वो सहारा समय के प्रभाव में नष्ट नहीं होता है।
हरे कृष्ण, सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें या फिर उसे वाइब्रेटर मोड पर अलर्ट कर दें ताकि कथा में बाधा ना हो। साथ ही साथ जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं उन्हें भी विनती करते हैं कि वो उन्हें लॉन पर लेके जाए ताकि कथा में बाधा ना हो। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। तो आज का दिन जो है वो राधा रानी का सहारा लेने का दिन है, चिरंतन सहारा, शाश्वत सहारा। इस जीवन से, इस जीवन के कष्टों से, अनंत तापों से मुक्त होने के लिए राधा रानी का सहारा, क्योंकि जब वो सहारा देती है तो कभी भी छोड़ती नहीं है, बीच मझधार में दुनिया में कष्ट भोगने के लिए कभी भी वो नहीं छोड़ती। एक बात है कष्ट की जो इस दुनिया में होते रहता है, हमारे संचित के अनुसार दुख तो आते रहता है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। एक होता है दुख का आना, मतलब घटना के स्तर पर, और एक है दुख की अनुभूति, एक है पेन और एक है सफरिंग, एक है दर्द और एक है दर्द का भोग। दर्द तो वैसे ही रहेगा जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक ये शरीर है, जब तक ये नश्वर जीवन है, तब तक दर्द जो है वो आते ही रहेगा। लेकिन दर्द का परिणाम आपके ऊपर होगा कि नहीं होगा ये उनके हाथ में। तो दुख होते हुए भी वो सब दुख दर्द का जो परिणाम है, जो उसकी अनुभूति है, वो उनकी कृपा से तुरंत नष्ट हो जाती है। इनका सहारा लेना यही हमारी एक कसौटी है, हमको केवल वही करना है। जब इनका सहारा लेते हैं तो तत्क्षण सारे दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सारे बेसहारा लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि इनके चरणों में तो स्वयं ठाकुर जी भी सहारा लेते हैं, इनके चरण इतने पवित्र हैं, सारे देवी देवताएं, सारे संत और स्वयं सबके नेत्र शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान भी उनको पुकारने के लिए बरसाने में आते हैं। शिवजी भी आए थे, गोपी बन गए, पार्वती जी ने उनका श्रृंगार किया गौरी कुंड पे, बिहार कुंड पे, और खुद श्रृंगार करके भेजा, जाओ पुकारो। श्री कृष्ण भगवान भी अपना रूप छोड़कर गोपी बनकर आते हैं, सखी बनकर आते हैं और पुकारते हैं, सब लोग उनका सहारा चाहते हैं, तो उनका सहारा शाश्वत है, समय के प्रभाव से परे है, जन्म जन्मांतर तक, अनंत काल तक ये सहारा आपके पास रहेगा। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, हृदय से श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि हमें सहारा दीजिए, हमें आश्रय दीजिए, हमारे दुखी तप्त जीवन पर करुणा की, प्रेम की झालर लगाइए। आपके प्रेम और करुणा से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, आपकी करुणा से, आपकी दया से, आपके वात्सल्य से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि हमें भी भगवान के चरणों की रति प्राप्त होगी। आप ही वो दे सकती हैं, क्योंकि कृष्ण आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके हैं, स्वयं आपके, आप होकर आपके गुलाम बनकर रह रहे हैं। जिनको भी आप चाहें उनको आप कृष्ण दे सकते हो। तो हम उस नीलमणि को चाहते हैं अपने लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए। उस नीलमणि को प्रसन्न करना चाहते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है। इसलिए हे श्रीमती राधा रानी, हे करुणामयी, हे देवी, हे ब्रज देवी के, हमें सहारा दीजिए, आपके करुणा के लिए पात्र बनाइए। हम जानते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, ना हमारे पास अच्छे गुण हैं, ना हमारी साधना अच्छी है, ना हमारा संचित अच्छा है, ना हमारा इतिहास अच्छा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो भिखारी हैं। एक भिक्षुक बनकर आइए राधा रानी के सामने। जब कुछ अपने आप को समझते हैं कि हम कौन हैं, बड़े हैं, विद्या संपन्न हैं, बलशाली है, धनवान है, ऐसे झूठ मूठ की उपाधियां लेकर जब आएंगे तो उनकी कृपा से दूर रहेंगे। ये सब धन दौलत, सब अधिकार, सब पावर जो है, ये सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे सब झूठ मूठ की उपाधियां की टोपियां पहनकर क्या उनको हम इम्प्रेस करेंगे। सब कुछ छोड़ कर आना चाहिए, सब रजोगुण तमोगुण को त्याग कर एकदम स्वच्छ होकर आना चाहिए, असहाय होकर आना चाहिए। जब बालक रोता है वैसे तरह से आना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहने के लायक भी नहीं है, ऐसी भावना से आएंगे तो पूरी कृपा उनकी प्राप्त हो जाएगी। और वो कृपा करने के लिए बैठी है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बनाना पड़ता है, बहुत भोली हृदय की है, बहुत भोली है, और जितना हमको उनकी कृपा चाहिए उससे भी अधिक उनको कृपा देने की इच्छा है। लेकिन हमारी चेतना सही जगह पर नहीं, तो उस चेतना को नम्र बनाकर, असहाय बनाकर, रो रो कर उनकी कृपा के लिए पुकारना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो सबसे पहली बार हम श्री वृंदावन धाम यात्रा करने के लिए गए थे और मथुरा स्टेशन पर उतरे थे, तो वहीं पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने हमारा स्वागत किया था और वहीं पर स्टेशन पर ही एक प्रवचन दिया था। 1986 दिसंबर की बात है ये, तो उसका एक वाक्य मुझे अभी भी याद आता है कि श्री वृंदावन में प्रवेश करने के पहले से वापस जाने तक हृदय के अंदर के कोने में श्री जी महारानी राधा रानी की कृपा की याचना रोते हुए करते रहने चाहिए। हृदय के अंदर के गर्भ में निरंतर राधा रानी की कृपा की याचना करते रहना चाहिए पूरे समय तक, और ब्रज से आने के बाद निरंतर उनके कृपा की याचना हृदय में करते रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा ही हमारे भक्तिमय जीवन में एक सहारा है और बाकी सब सहारे सब टेम्पररी है। वो अगर हमको कृपा देती है तो कुछ कुछ कृष्ण का भजन हम कर सकते हैं, कुछ कुछ उनको पुकारने में सफल हो सकते हैं, कुछ कुछ वो सुनने में भी उनको मनाएगी, सुनिए भक्त आपके पुकार रहे हैं, वो जब कहते हैं ना तभी सुनते हैं, वो उनकी सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण का भजन नहीं हो सकता है, इसलिए हम पहले राधा को पुकारते हैं फिर कृष्ण को पुकारते हैं, क्योंकि राधा को पुकारने के बाद ही हमारी और कृष्ण की दृष्टि गिर सकती है, इसलिए उनको पुकारना सीखो। इस दूर तक, दूर से आप आए हो, यहाँ पर समय निकाल कर आए हो, हृदय से पुकारो, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बहुत करुणामयी है वो, दीन वत्सला भक्त वत्सला है राधा रानी। उनके 25 प्रमुख गुणों में से एक गुण का गुण है कि वो करुणा के सागर हैं, इतनी करुणा तो कृष्ण में भी नहीं, और कृष्ण भी समझ नहीं पाते कि इतनी करुणा उनके पास कहाँ है, कैसे है। वो भी उनकी करुणा चाहते हैं, वो भी उनकी कृपा चाहते हैं, वो भी उनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, वो भी उनका फेवर चाहते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, और वही उनका भजन है, वही साधन है, वही उनका जीवन का सर्वस्व है राधा नाम, जो एकांत में उसका भजन करते रहते हैं। तो ऐसी राधा रानी की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। सबसे पतित से पतित जिसकी अवस्था है, जिसकी पतित होने का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, ऐसे पतित से पतित जीव भी सर्वोच्च अवस्था में पहुंच सकता है, ये राधा रानी की कृपा है। कैसे, से कई प्रमाण है उसके, अनंत कहानियां हैं। तो एक बार राधा रानी राधा कुंड के आसपास चल रही थी अपने सखियों के साथ, तो कुछ उनको पैर को लगता है, कुछ खटकता है, तो राधा रानी पूछती है क्या हो गया, क्या था, तो सखियां कहते हैं कि एक जो मादा सुअर है उसका देहांत हो गया है, उसके शरीर को आपको ठेस लग गई है। राधा रानी मुड़कर देखती है तो मादा सुअर जो है उसका देहांत हो गया है। तो राधा रानी कहती है तुरंत इसको मेरे पार्षद में ले लो। और तुरंत उस सुअर का आत्मा जो है राधा रानी के सखी वृंद में प्रवेश कर रहा है। सोच सकते हैं कृपा कहाँ से कहाँ। ऐसे कहते हैं राधा कुंड जो ऐसा इतना दया घन सागर है वहां पर कृपा का, राधा रानी का, कि किसी भी समय कृपा बरस सकती है वहां पर। तो पात्र लेकर तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हमेशा, कहीं भी किसी भी समय अनंत कृपा बरस सकती है वहां पर, ऐसा वो स्थान है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो मुझे राधा रानी इतना ही प्रिय है, वो जल राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है मेरे लिए। वहां पर जो भी आके पुकारता है राधा रानी की शरण ले लेता है, वो मेरे लिए जितनी राधा रानी प्रिय है उतना वो प्रिय हो जाता है। उसी के पास एक स्थान है शिवखोर, जहाँ पर शिवजी निवास करते हैं। एक बार वहां पर ब्रजवासी बालक एक भेड़िए को, मादा भेड़िए को बहुत परेशान कर रहे थे, उसको भगा रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे, उसको चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे। जान के लिए वो भेड़िया भाग रही थी यहाँ वहाँ, तो बच्चे छोड़ने रहे थे, बहुत चारों तरफ से उसको घेर रहे थे। तो एक गड्ढे में घुस गई, वो बिल में समझो अंदर घुस गई। तो बच्चों ने क्या किया, बाहर से लकड़ी वकड़ी रखे उसको आग लगा दिया ताकि वो बाहर ही ना आ पाए, गड्ढे के मुख में आग लगा दिया। तो जोर जोर से असहाय उसे रोने लगी, वो पुकारने लगी। तो राधा रानी उस समय अपनी ललिता विशाखा सखियों के साथ में राधा कुंड घेरे में विहार कर रही थी, कान में उनकी पुकार आती है, असहाय पुकार। तो ललिता को कहती है ललिता जाओ देखो कौन पुकार रहा है। ललिता जी भाग भाग के आती है पुकार की ओर, और देखती है कि सब बच्चे परेशान कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसके अंदर भेड़िया बिल में फंसी हुई है, रो रही है। तुरंत बच्चों को यहाँ वहाँ करके आग को हटाकर वो भेड़ियों को बाहर निकाल दी, फिर भी पुकार रही है वो, रो रो के असहाय होकर पुकार रही है। तो उसको लेकर ललिता देवी राधा रानी के पास में आती है। राधा रानी कहती है इसे अपने पार्षद में ले लो तुरंत। सोच सकते हैं आप कौन सी अवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। ऐसी कृपा केवल राधा रानी ही कर सकती है। बरसाने के मंदिर की जो सीढ़ियाँ है ना, कुछ 300 के ऊपर कुछ सीढ़ियाँ हैं, सब लोग चढ़कर जाते हैं पहाड़ पर, नित्य प्रति चढ़कर जाइए जाइए राधा राधा कहिए कहिए, राधा रानी का नाम लेते हुए भक्त लोग चढ़ते हैं। तो उस सीढ़ियों की बुहारी करते हैं। बुहारी ये बहुत सुंदर शब्द है, हम लोग कहते हैं झाड़ू लगाना, लेकिन बुहारी करना ये बहुत सांस्कृतिक शब्द है। तो वो जो भंगी है बुहारी करने वाला, वो बड़े प्रेम से बुहारी लगाता था। क्यों बुहारी करते हैं सीढ़ियों की पता है आपको? किसी भी समय राधा कृष्ण के साथ सखियों के साथ में उससे उतर सकती है, चढ़ सकती है। तो किसी भी समय पर उस पर कंकड़ कांटे कचरा नहीं होना चाहिए, उनके कोमल कमल जैसे चरणों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इस भावना से भक्त उसकी बुहारी करते रहते हैं। तो वो बुहारी कर रहा था, बड़े प्रेम से पुकार रहा था, राधे श्याम राधे श्याम, जय वृंदावन जय राधे श्याम, आंखों में आंसू लेकर बुहारी कर रहा था। और एक बुहारी करने का क्या उद्देश्य होता है कि हो सकता है बुहारी करते करते श्री जी आ जाएं, दर्शन हो जाएं, इस भावना से बुहारी करते हैं। तो वो इतने प्रेम से, इतने शुद्ध भाव से, इतने दास्य भाव से वहां बुहारी कर रहा था कि उसके बल से, पुकारने के बल से, भाव के बल से राधा और कृष्ण प्रकट हो गए। एक कल्प वृक्ष था वहां पर, उसकी एक डाली ऐसी सीढ़ियों के ऊपर ऐसी फैल रही थी, उसके ऊपर ऐसे बैठे हुए पैर लाते हुए प्रकट हो गए। आचार्यगण क्या कहते हैं, जब आप पुकारते हो तो आपका इष्ट भाग के आता है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। कहाँ आप कहीं भी बैठा हो, इष्ट का मतलब हमारा जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम वंदन करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जब उनको पुकारते हैं तो वो रोक नहीं सकते हैं, उनको भाग के आना पड़ता है। भाव ऐसी वस्तु है कि भाव जब प्रकट होता है तो भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते, उस व्यक्ति के लिए कृपा करने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इस भाव से वो भंगी पुकार रहा था। सेवा कोई कम और ऊपर नीचे नहीं होती है। हम कहते हैं कि मंदिर की पुजारी सेवा करना बहुत अच्छा है, झाड़ू लगाना बर्तन मांजना बहुत नौसिखिया की सेवा है, कोई व्यवहार करना अलग सेवा है, ऐसा नहीं है। सेवा कोई भी ऊँची नीची नहीं होती है, सेवा का भाव, सेवा करने का भाव जो है वो ऊंचा नीचा होता है, और केवल उसी भाव को भगवान देखते हैं, वो सेवा क्या कर रहा है उसको नहीं देखते। सेवा किस भाव से कर रहे हैं, दासों का दास बनकर सेवा कर रहे हैं, उसको देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे न्यूनतम दास जो है उसकी भावना से सबसे ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो आ गए, वो प्रकट हो गए डाली पर, हाँ बोल रहे हैं एक दूसरे से, देखो राधा रानी कह रही है, देखो श्याम जी कितने सुंदर भक्त हैं, इतने प्रेम से पुकार रहे हैं, इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, कुछ कृपा होनी चाहिए, उस पर आशीर्वाद मिलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं क्या क्या कर रहे हैं, राधा रानी कहती है आपका अंगरखा उतार के दे दो, अंगरखा उतार के दे दो उसको, कृपा करो उसके ऊपर। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे पिताजी ने मुझे पहनाया है, बड़े प्रेम से पहनाया है, शाम को जाऊंगा लौट के तो पूछेंगे कहाँ गया कोट अंगरखा, कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूँ, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तो दे दो ठाकुर जी आप इतना बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं, दे दो उसको, कृपा करो उसके ऊपर। नहीं 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 बोलते, तो राधा रानी कहते मत दो, मैं दूंगी, मेरे पिताजी नहीं पूछेंगे मुझे, मैं दूंगी। इसलिए अपने जो उत्तरीय वस्त्र शॉल जो है वो उतार कर उसको फेंक देते उसके ऊपर, ऊपर से नीचे वो बुहारी लगा रहा है, हाँ उसके ऊपर ये बैठ के बातें कर रहे हैं, ऊपर से अपनी शॉल निकाल कर राधा रानी बड़ी कृपा से उस पर फेंक देती, तो वो कांपने लगता है, गदगद होकर बेहोश होकर गिर जाता है, राधे राधे पुकारता है। सुबह मैंने बताया था ना कि वो उत्तरीय वस्त्र, वो जो शाल है उसको जो हवा लगती है और वो हवा लगकर जो परावर्तित होकर आती है उस दिशा को ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। वो शॉल जिसको जो हवा लगकर आई है उस हवा को भी नहीं प्रणाम करते, हवा की दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा से हवा आ रही है, वो शॉल उस पर गिर रही है तो क्या हो गया रहेगा उसको, उसकी आत्मा पर कितना आध्यात्मिक पोषण प्राप्त हो गया रहेगा, आनंद, हाँ आनंद की अनुभूति ठाकुर जी की सेवा में, राधा रानी की सेवा में, ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा ये नहीं कि आपको अधिक धन मिला, आपको प्रमोशन मिला, हाँ आपका रोग ठीक हो गया, आपके बच्चे को एडमिशन मिला, आपकी लड़की की शादी हो गई, आपकी बीमारी ठीक हो गई, हाँ ये सब उनकी कृपा नहीं है। वो चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शाश्वत लाभ नहीं है। शाश्वत लाभ तो इन सारे दुखों को होते हुए भी आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना और उनकी सेवा को प्राप्त करना, सबसे पहले सेवा उसके बाद में आनंद, आनंद मिले या ना मिले सेवा मिलेगी, वही कृपा है उनकी, ऐसी कृपा राधा नहीं करते। एक वो बहुत सुंदर कहानी है, आप सब जानते हैं इस कहानी को, लेकिन कहानी का अंतिम चरण शायद जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं बताने का प्रयास करूंगा। हाँ महाभारत के कहानी में आप जानते हैं ना कि सबसे अंतिम चरण में अश्वत्थामा बहुत क्रुद्ध होकर सोते हुए पांडवों के 5 बालकों को मार डालता है, ये सोचकर कि दुर्योधन बहुत खुश होगा। लेकिन जब वो ये खबर सुनाता है कि मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया है, तो दुर्योधन बहुत उसको निंदा करता है, तो कैसा वीर है, हम तो युद्ध में लड़ने वाले हैं, चुप चुप कर रात को अंधेरे में मारने वाले नहीं है। दुर्योधन बहुत बुरा था वैसे, लेकिन नियम का पक्का था वो, उसको अपने छात्र धर्म पर भी विश्वास था। तो उसके बाद में अश्वत्थामा जब बालकों को मारा तो भीम अर्जुन सब क्रुद्ध हो गए, उसके पीछे लग गए, उसको पकड़ के लाए वो, भगवान सारथी बनकर अर्जुन उसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी आगे भाग रहा है, उसके घोड़े थक जाते हैं तो उतर जाता है भागने लगता है, तो अर्जुन भी उतर जाते हैं और भागते हैं, कृष्ण भगवान उसके पीछे अर्जुन के साथ उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ कर द्रौपदी के सामने लाते हैं। द्रौपदी भी क्या महान भक्त है भगवान की, वो कहते हैं ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, क्योंकि मैं जो क्या नाम था उसकी माता का अश्वत्थामा के, कृपी, कृपी कृपाचार्य की बहन थी वो, तो कृपी माता को वो दुख मैं देना नहीं चाहती जो मुझे 5 पुत्रों के जाने से हुआ है, इसलिए छोड़ दो, हमारे गुरु के पुत्र भी वैसे भी हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है, ब्राह्मण भी है, और मैं माता को कष्ट नहीं देना चाहती, छोड़ दो उसको। इतनी महान हृदय की द्रौपदी है, कौन कर सकता है ऐसे, इसके 5 जवान बच्चों का सोते हुए शरच्छेद कर दिया गया है, और वो वध करने वाला सामने पकड़ के लाया गया उसको दंड देने के लिए, तो पहले हम दंड देंगे उसको, हाँ मुंह पर उसके लात मारेंगे, थोड़ा तो क्रोध दिखा लेंगे ना बाहर, लेकिन वैष्णव ऐसे होते हैं, हाँ खुद के दुख को सहन लेते हैं लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना चाहते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन द्रौपदी की भी इच्छा पूरी करो, भीम की इच्छा भी पूरी करो। भीम अपनी बात पर अड़े, इसको मारो और द्रौपदी करिए मत मारो, दोनों की इच्छा पूरी करो। अर्जुन बड़े चतुर भक्त हैं, भगवान का मंतव्य जानते हैं। अर्जुन तलवार से उसका मणि जो है उसके सर पे उसको निकाल लेते हैं, उसके बालों को एकदम गलत तरीके से काटते हैं, एकदम भद्दा। एक क्षत्रिय के लिए, तो ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे, तो युद्ध करने वाले व्यक्ति को अपमान जो है वो मृत्यु से भी अधिक बढ़कर होता है। हा? तो ऐसे अपमानित करके उसको भेज देते जो मृत्यु से भी उसको अधिक अधिक दर्दनाक है उसके लिए। और भगवान ऊपर से श्राप भी देते हैं उसको कि तुम्हारा मणि निकलने के बाद ये जख्म होगा, ये जख्म कभी सूखेगा नहीं, कभी भी नहीं भरेगा, इसका खून और पस हमेशा बहते रहेगा और भयंकर दर्द में तड़पते रहोगे और ये कभी भी सृष्टि के अंत तक कि तुम्हारा जख्म ठीक नहीं होगा। और सबसे इससे बुरी अवस्था किसकी क्या हो सकती है, जाओ अभी और मरोगे भी नहीं तुम इस वेदना से मरना चाहोगे, नहीं चाहिए मुझे जीवन ये, तो मरोगे भी नहीं, ऐसा भयंकर उसको श्राप मिलता है। जाओ यहाँ से, भेज देते हैं उसको, भगा देते हैं वहाँ से। बहुत तड़पता है अश्वत्थामा, बहुत तड़पता है, बहुत इतना दर्द से तड़पता है। ब्रह्मा के पास जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। फिर वो शिव जी के पास आता है रोते हुए, बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते आपके, लेकिन वो कहते हैं कि आप शायद बरसाने में जाओ, राधा रानी कुछ आपके लिए कृपा कर सकती, अगर उसकी करुणा आप पर आई तो कुछ आपका कल्याण हो सकता है। तो अश्वत्थामा जी, ये अंतिम चरण है कथा का, वो अश्वत्थामा जी जो है वो ब्रज में आते हैं और बरसाने के पास कुछ ही किलोमीटर पे, दो चार किलोमीटर, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, एक सुंदर वन है, पिपासा वन। हाँ, पिपासा यानी बहुत तीव्र प्यास, इसको पिपासा कहते हैं। जब पिपासा मतलब प्यास बहुत तीव्र हो जाती है आध्यात्मिक स्तर पर, उसको पिपासा कहते हैं। तो उस पिपासा वन में अपने मिलन की प्यास, जो तीव्र प्यास है, वो राधा कृष्ण बुझाते हैं और वहाँ रास नृत्य करते हैं। और उस रास नृत्य में जब राधा रानी को एक्चुअल पानी की प्यास लगती है तो कृष्ण भगवान एक सुंदर सरोवर बनाते हैं, श्याम कुंड, और उसका जल राधा रानी को अपने हाथ से पिलाते हैं। जब ठाकुर जी को प्यास लगती है तो राधा रानी अपने हाथ से सरोवर बनाती है, राधा कुंड, और उसका जल कृष्ण को पिलाती है। ये राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन के पास वाला नहीं है, ये पिपासा वन में अलग राधा कुंड श्याम कुंड है। ऐसे ब्रज में बहुत राधा कुंड श्याम कुंड है, हाँ ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा सुंदर वन है, वो बहुत सुंदर झाड़ी है, बहुत विशाल क्षेत्र है, एकदम शांति है, सब जगह पेड़ हैं। वहां पर पिपासा वन में बैठकर अश्वत्थामा राधा रानी को पुकारते हैं, बड़े दीन होकर, बड़े दयनीय अवस्था में असहाय होकर पुकारते हैं। और ब्रजचंद्र सागर में वर्णन दिया है कि राधा रानी अश्वत्थामा के लिए प्रकट हो जाती है ब्रज में। एक तो ब्रजभूमि का महिमा है, वो यहाँ पर राधा और कृष्ण विचार विहार करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श उसको हुआ है, वो भूमि इतनी पावन है, वो भूमि पर जाते ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर हम पुकारते हैं उस भूमि का लाभ लेकर, उसकी चेतना का, उसके आध्यात्मिक बल का सहारा लेकर उनको पुकारते हैं तुरंत। वहाँ पर कैसे लोकल कॉल है, वहाँ पर एसटीडी कॉल नहीं है, वहीं रहते हैं वो, वहीं आसपास बोलते रहते हैं, कब चले दर्शन दे दें पता नहीं। राधा रानी बड़ी कृपा से दर्शन देती है और राधा रानी के दर्शन मात्र से अश्वत्थामा का सारा दर्द खत्म हो जाता है, जख्म सूख जाता है, सारे पीड़ा से और जितना भी कष्ट उसके लिए था सब समाप्त हो जाता है। और राधा रानी उनको आदेश देती है अब यही रहो और मेरा भजन करते रहो। तो अश्वत्थामा भी, अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति भी उनकी कृपा से दुख से मुक्त हो गया और आज भी अश्वत्थामा जी वहाँ निवास करते हैं, दुख दर्द में नहीं आनंद में रहते हैं और पिपासा वन की रक्षा करते हैं। पिपासा वन में ऐसी महिमा है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर किसी प्रकार की लकड़ी तोड़ के लेके जाता नहीं है, केवल भगवान की सेवा के लिए, कोई यज्ञ वज्ञ करना हो, कोई दावत हो भगवान के लिए, भंडारा हो, तो ही वहाँ की लकड़ी काट कर लेके जाते हैं और बची हुई लकड़ी वापस आके छोड़ के जाते हैं वहाँ पर। इसलिए पिपासा वन में आप जाएंगे ना, आपको जगह जगह लकड़ी का ऐसा बाहर दिखेगा, यहाँ पर रखा है कुछ लकड़ी, वहाँ रखी है, सब जगह लकड़ी रखी हुई दिखाई पड़ेगी आपको। वो लकड़ी है जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के बाद में बची हुई लकड़ी वापस आकर छोड़ के जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर लकड़ी अपने निजी स्वार्थ के लिए लेके जाते हैं तो व्यक्ति वो अंधा हो जाता है, उसको लकवा हो जाता है या तो मर जाता है। ये सत्य है, लोगों ने अनुभव किया है। और वो सिद्ध महात्मा वहाँ भजन करते हैं, उनको आज भी वहाँ पर अश्वत्थामा का दर्शन होता है। अब वो अश्वत्थामा नहीं रहा जिसकी कहानी हम सुना करते थे, वो भक्त बना हुआ है। और अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं है, वो चिरंतन है, जब तक सृष्टि है इसलिए वही निवास करते हो। ये राधा रानी की करुणा है। उनके पास जो भी जाता है वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो सही भाव से उनको पुकारता है तो सब दुख से और दुखों के परिणाम से, क्या कहते हैं, पापों के परिणाम से वो उनको मुक्त कर देती है। और दूसरा स्वभाव उनका ऐसा है, अभी हमको इससे क्या सीखना है कि हम भी कुछ अश्वत्थामा से कम नहीं है। हमारे अलग टाइप के पाप हैं, कलयुग के पतित जीव हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। अभी प्रवचन कर रहे हैं, कुछ घंटे बाद क्या सोचेंगे भरोसा नहीं है, किस भोग का विचार करेंगे मालूम नहीं है। ये सत्य है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अभी अच्छा वातावरण है, भक्तों का संग है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, तो मन में अच्छे विचार आ रहे हैं आपकी कृपा से। जब आपकी सत्संग से हट जाएंगे तुरंत और पापी विचार मन में आने लगेंगे, यहाँ वहाँ को दर्शन करेंगे उसका मोह होगा। हमारे अंदर बहुत बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, बहुत भयंकर, जो एक भक्त कहने के लायक भी नहीं हम लोग। लेकिन वो बड़ी करुणामयी है। मैंने सुबह भी बताया था कि जितना हम पाप नहीं कर सकते हैं उससे अधिक पापों का निवारण वो कर सकती है। इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। हमारी होपलेस, निराश, मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई आशा ही नहीं है, ऐसी निराश अवस्था है हमारी, कोई गति नहीं है हमारे लिए। ऐसी अवस्था में भी हमारे लिए आशा का किरण राधा रानी है, क्योंकि वो सब जानती है कि हम लोग कितने पतित हैं। इसलिए उनके साथ सामने जाकर कोई नाटक नहीं करना चाहिए, कोई ढोंग नहीं रचना चाहिए, जो सत्य है उसको प्रकट करना चाहिए। हम ऐसे हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। वदंती मतलब साफ साफ बोलना चाहिए, राधा रानी हम ऐसे गिरे हुए हैं, लेकिन आपकी फिर भी शरण चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं। और चाहना चाहिए, पुकारना चाहिए, वो ट्रेनिंग लेना चाहिए कैसे उनके सामने खड़े होना है, सत्य को प्रकट करते हुए उनके सामने खड़े रहना है, पुकारना है, दया करो, कृपा करो, राधे किशोरी दया करो। कहाँ जाएंगे आपके कृपा के बिना, कैसे कृष्ण को पाएंगे आपके कृपा के बिना, कैसे भजन करेंगे उनका, कैसे वो हमको देखेंगे। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन, मुनिन्द्र वृंद वृंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। आपके केवल होने से त्रिलोक का शोक नष्ट हो सकता है। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, आपका चेहरा, आपका मुख कमल इतना प्रसन्न है, आपके वाक्य, आपके वचन इतने मधुर है। निकुंज भू विलासिनी, आप निकुंज में श्री वृंदावन धाम के भूमि का आश्रय लेती हैं, वहीं पर निवास करती हैं। कब कृपा करोगी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब आपकी कृपा की एक नजर हम पर गिरेगी, कब हमारा उद्धार होगा। ऐसे याचना करनी चाहिए। और बहुत भक्तवत्सल है, बड़ी भक्तवत्सलाएं हैं, भक्तों को बहुत चाहती है, जो उनके इष्ट ठाकुर जी को चाहते हैं उन पर बहुत प्रेम करती है। जो भी ठाकुर जी पर प्रेम करता है, अरे ठाकुर जी पर प्रेम नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों बनना है, उसमें अज्ञानी जानवर बनना अच्छा है, क्यों आना है मनुष्य बनकर। हाँ, जो ठाकुर जी पर प्रेम नहीं करते हैं वो जिंदा मुर्दा है, मतलब समझ गए ना आप, जीवंत शव समान, चलते फिरते मृत शरीर है, वो चल रहे हैं, भोग ले रहे हैं सब जगह, जो कृष्ण पर प्रेम नहीं है। लेकिन जो कृष्ण पर प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम करना चाहते हैं, उनको वो बहुत चाहती है। अयोग्य होते हुए, तैयार अब तक नहीं हुए, फिर भी वो उनको बहुत चाहती है, अपने चरणों में लेकर तैयार करना चाहती है। इसलिए हम पुकारते हैं, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे, हे करुणामयी, हे दयामयी वात्सल्यमयी राधिके, कब कृपा करोगी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो षड गोस्वामी से में से एक है, सबसे विरक्त संत थे वो। दिन में एक हाथ में कितना छाछ आती है, उतना छाछ 3 दिन में एक बार पीते थे वो। और फिर भी वो पीते वक्त अपने आप को कोसते थे कि मैं कितना भोगी हूँ। हमारा पेट भर के महाप्रसाद खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हम। और महाप्रसाद कब मिलेगा? अरे वो नहीं मिला, चार स्वीट आए पांचवा नहीं आया। अरे ये नहीं, विरक्त थे ऐसे। ठाकुर स्वयं नित्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि उनकी विरक्ति की नकल कोई नहीं कर सकता है, करेगा तो वो मर जाएगा, नकल करना भी मुमकिन नहीं है उनके लिए। सनातन गोस्वामी की नम्रता और रघुनाथ दास गोस्वामी की विरक्ति, इसका कोई तुलना नहीं कर सकता है, कोई करना प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड किनारे बैठकर भजन कर रहे थे, राधा और कृष्ण को पुकार रहे थे। अब कैसा भजन था, जैसे मैंने सुबह बताया, सो रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा भजन नहीं कर रहे थे। शरीर के सर से मुक्त होकर, हाँ, तुरिया अवस्था में शरीर मन बुद्धि के स्तर को पार करते हुए शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर बैठकर वो भगवान को पुकार रहे थे। शरीर की सुझबुझ पूरी खो बैठे थे। कैसे? क्योंकि इतनी गर्मी थी उस समय। आप जानते हैं ब्रज में आप गए होंगे बीच गर्मी में, कभी जाइए वहां पर आनंद लेकर आइए। 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री। कपड़ा पहनने के बाद में कपड़े के अंदर चर्म जलता है, स्किन बर्न्स, हाँ, नाक के इधर अग्नि लगती है पूरी ज्वाला की तरह, इतनी भयंकर गर्मी होती है। उस गर्मी में ये रघुनाथ जी महाराज धूप में बैठे हुए, उनका चर्म एक्चुअली जल रहा है, सन बर्न्स, उनको उसका होश ही नहीं है, मग्न है भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान की मानस सेवा में तब मग्न है एकदम। तो राधा रानी उनका ये जो कष्ट है, जो उनको एक्चुअली नहीं हो रहा है लेकिन वो शरीर को हो रहा है, वो देखकर वो करुणा उनकी जागृत हो जाती है। और वहां पर आती है राधा रानी और अपना उत्तरीय वस्त्र जो है रघुनाथ के ऊपर ऐसे फैलाती है, उसको छाया देती है, और अपने उत्तरीय वस्त्र से उसको छाया देकर स्वयं धूप में खड़ी है और उसके भाल प्रदेश से घर्म बिंदु टपक रहे हैं, पसीना टपक रहा है। और सनातन जी महाराज दूर से देखते हैं, अरे रघुनाथ जी भजन कर रहे हैं और राधा रानी खड़ी है और अपने उत्तरीय वस्त्र से छाया दे रही है और खुद पसीने में जल रही है, पसीना बह रहा है और वो धूप में जल रही है। तो रघुनाथ जी को बाद में मिलते हैं, बोलते हैं, रघुनाथ जी आप भजन किस लिए करते हैं? राधा रानी और कृष्ण की सेवा करने के लिए करते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। अभी तो कुटिया बना लो, उसके पहले एक बार भजन कर रहे थे तो शेर आया था, राधा कुंड में जल पी रहा था, तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, शेर को उन्होंने भगा दिया, क्योंकि कहीं रघुनाथ जी को कष्ट न दे, वो कभी कोई ईजा न कर दें, जख्म न कर दे। तभी भी उन्होंने टोका था, तभी भी उन्हें भजन कुटी नहीं बनाया था। राधा रानी स्वयं गोलोकेश्वरी कृष्ण स्वामिनी कृष्ण हृदय संजीवनी स्वयं खड़ी आपके सामने, आपको सेवा दे रही है। उसके बाद में फिर रघुनाथ जी महाराज ने कुटिया बनाई जो अभी राधा कुंड के किनारे में विराजमान है। ऐसी करुणा है, ऐसी भक्त को भक्तवत्सला है वो। एक बार वो रूप गोस्वामी जी टेर कदम्ब स्थान पर निवास कर रहे थे, बहुत सुंदर स्थान है वो, नंदगांव में है, और रोज जब गाय चराते हैं भगवान तो शाम को सब गायों को इकट्ठा करते हैं, दिन भर भटकते हुए आते हैं, शाम को वहाँ पर टेर कदम पर चढ़ जाते हैं और सबसे ऊंची डाली बैठकर बंसुरी बजाते हैं। ये जो बंसुरी है इसकी भी छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। तो बंसुरी जो है भगवान अपने होठों को लगाते हैं, सब गोपियाँ उनका द्वेष करती हैं, द्वेष मतलब वो दिव्य बात है सब, वो हमारे साथ द्वेष नहीं है, लेकिन ये सोचती है कितना भाग्य है इसका, देखो भूमि से आई हुई है ये, बांस की बनी हुई है, मतलब भूमि की पुत्री है, जमीन से आई हुई है, इतनी सख्त होती है, लेकिन भाग्य देखो इसका, भगवान शायद स्वयं भगवान अपने अधरामृत को उसको दे रहे हैं, अपने होठों को लगा रहे हैं। हम तो उनके होठों के अमृत को प्राप्त करने के लिए कितने व्याकुल हैं हम लोग, और वो हमेशा उनको होठों को चिपकी रहती, हमको रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है उसके लिए, तो दिन दहाड़े कभी भी उनको होठों पर लगा रहते। तो वो बंसी को भगवान कहते हैं, हे बंसी तो राधा राधे का नाम रट, क्योंकि बंसी में 8 धुनें होती हैं और 8वीं धुन में राधा का ही नाम निकलता है, केवल 8वीं धुन जो है वो केवल राधा रानी के लिए समर्पित है, जब वो बजाते हैं केवल राधा राधा, केवल उनका ही नाम निकलता है उस, और केवल उनको ही सुनाई पड़ता है, जहाँ पर भी है वो उनको हृदय में उनकी चल विचल हो जाती है जब वो पुकारती है। तो भगवान कहते हैं, बंसी तू जानती है कि तुम्हें मैं इतना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि तू राधा का नाम रटती है। तू सिद्ध हो गई हो क्योंकि राधा का तुम नाम रटती हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ओठों से लगाता हूँ। अब तू राधा का नाम रट ले तब मैं तेरा संग नहीं छोड़ूंगा कभी। तो बंसी कहती है, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, तो तुम जानती नहीं हो ये राधा नाम जो है मेरा भी साधन है, मैं उसी पर जीता हूँ, मेरा अस्तित्व ही उस पर निर्भर है, एकांत में उसी को पुकारता हूँ मैं, और तू भी पुकार रही है इसलिए मैं, तू मुझे इतनी प्यारी है, तो मैं तुम्हें इतना मेरे पास रखता नहीं कभी भी, क्योंकि तुम राधा को पुकारती हो इसलिए मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। तो वो बंसी में छठवीं धुन बजाते हैं और सब गायों को बुलाते हैं, सब गायें जो एकांत ऊपर करके भाग भाग के आती, फिर वो सबको इकट्ठा करके अपने नंद भवन में चले जाते हैं। उस जगह पर रूप गोस्वामी ने बैठ के भजन किया था, बहुत रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर शांत और दिव्य स्थान है वो। तो रूप गोस्वामी एक दिन सोच रहे थे कि अरे मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु सनातन गोस्वामी का जन्मदिन है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो सोच ही रहे थे कि कुछ किया जाए, अचानक एक कन्या वहाँ पर आ जाती है सर पे टोकरे धारण करते हुए, उसमें चावल, हाँ दूध गाय का, उसमें शक्कर, उसमें पिस्ता बादाम मेवा सब लेकर आती है। कहती महाराज जी मेरी मैया ने मुझे भेजा है। बोले क्यों? वो कह रहे हैं कि उनके लिए जाके खीर बना लो। तो महाराज जी आप बनाएंगे? महाराज जी कहते मेरे पास तो समय नहीं, मैं तो यहाँ पर लेखन कर रहा हूँ, आप ही बना लो। तो वो कन्या बड़े प्रेम से सब साधन सामग्री जोड़कर बड़ी सुंदर खीर बनाते हैं और कहते भोग भी लगा लो ठाकुर जी को, तो भोग भी लगा देती है और फिर चली जाती है। और कुछ देर बाद सनातन गोस्वामी वहाँ पर आते हैं और सनातन गोस्वामी को खीर प्रसाद रूप गोस्वामी जी अर्पण करते हैं। और सनातन गोस्वामी जैसे ही उस खीर को खाते हैं तो उनको दिव्य अनुभव होता है, शरीर में कंपन होने लगता है, आँखों से अश्रु बहते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि हे रूप कहाँ से लाई तुमने ये खीर? तो कहते कन्या आई थी, बताओ कन्या कैसी थी, क्या वर्णन करो उसका, कैसे दिख रही थी वो? तो वर्णन किया उन्होंने, अरे पगले वो तो राधा रानी थी स्वयं। क्या कहा उन्होंने? मतलब मैया ने भेजा, अरे तो वो कृति मैया ने भेजा था उसको तुम्हारे लिए, तुमने उससे सेवा लिया, कैसे भक्त हो तुम, राधा रानी से सेवा लेते हो। हाँ, तो रूप से रोने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ये भी रो रहे हैं पश्चाताप में, ये भी रो रहे हैं, लेकिन खीर खीर खाना बंद नहीं हो रहा है उनका, वो खाते जा रहे हैं। तो उस खीर में इतना प्रेम राधा रानी का, इतनी इतना वात्सल्य उसके अंदर है, उसका स्वाद भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हम कैसे हो, कैसे हम लोग उनसे सेवा लेके उसका लाभ ले रहे हैं, कैसे भक्त हैं, ऐसे कोस रहे हैं, साथ साथ में खीर का आस्वादन भी कर रहे हैं। अचिंत भेदावेद तत्व, ये भक्ति में सब कुछ होता है। बाय द वे, कुछ ही दिन में पहले मैं पढ़ रहा था कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं भगवान को लेकर, जब उनके पंख ऐसे हिलते हैं ना, उस पंखों से वेदों के श्लोक प्रकट हो जाते हैं, कर्दम मुनि दर्शन करते भगवान का, और जब भगवान को लेकर गरुड़ जी आते हैं तो उनके पंखों के आवाज, पंखों के हिलने से वेदों की ध्वनि उत्पन्न होती है। आप सब लोग तैयार रहो, हाँ कभी भी चमत्कार हो सकता है, बी रेडी। भगवान के भक्ति का जीवन इतना दिव्य है, एक बार जो भगवान का सहारा लेता है ना, उसके जीवन के चमत्कार की कमी नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बी रेडी, का नाम पुकारते रहो बस, और चमत्कार नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन चमत्कार हो सकता है, इसका मुझे बताया। तो ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक साथ दुख भी हो रहा है, पश्चाताप भी हो रहा है, एक साथ में उसका आस्वादन भी हो रहा है। हाँ, राधा रानी अपने भक्तों को प्रेम देना चाहती, भक्त केवल इच्छा करता है और राधा रानी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। मैं कल साली सोचा उन्होंने कि सनातन जी के लिए कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो वो खीर लेकर आई, दिव्य खीर बनाकर अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाया, और सोच सकते हो उसका साथ क्या होगा, स्वयं परम भक्ता है वो भगवान की, सर्वोच्च भक्त स्थान पर है वो अपने हाथ से अपने भक्त के लिए सेवा के लिए बना रही है। कैसा अनुभव हो गया होगा सनातन जी को, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं बस। तो इस तरह से श्री बरसाना धाम जो है वो सभी दुखों को मिटाने का दिव्य स्थान है। तो उस बरसाने में कई सुंदर सुंदर स्थान हैं। एक्चुअली अलग अलग कल्पों में अलग अलग जगह पर राधारानी का जन्म हुआ है। एक जगह है भानोखर, वहाँ पर भी राधारानी का जन्म हुआ है। एक जगह है पीली पोखर जिसका पहला नाम प्रिया कुंड था, वहीं पर भी वो भी विश्वानु महाराज का कुंड है, वहीं वहाँ पर भी राधारानी का आविर्भाव हुआ है। तो एक बार कमल से हुआ है, एक बार भूमि से हुआ है, और रावल में भी हुआ है जो रूप गोस्वामी और भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार वर्णन करते हैं। सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, कोई विरोधाभास नहीं है उसके अंदर। और बरसाने का लता पता राधा रानी का स्वरूप है। वहाँ पर भूमि का एक एक कण, रज का एक एक कण, लता पता एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक डाली राधे को ही पुकारती रहती है। ब्रजवासी जब जन्म लेता है तो पहला शब्द वो सुनता है श्री राधे, उसके कान में सबसे पहले दीक्षा उसको मिलती है श्री राधे नाम की, फिर जीवन भर राधे का नाम रटता है वो। कभी ठाकुर जी को ज़्यादा करके पुकारते नहीं वो, लेकिन राधे को उन्होंने पुकारते कभी भूलते नहीं है, दिन रात राधे को पुकारते रहते। चाहे अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, बुरा हो, गरीब हो, राधा रानी को पुकारते रहते हैं। तो ये राधा रानी का जो मंदिर है उसका मैं आपको संक्षेप में इतिहास बताना चाहूँगा, क्योंकि वो इतना सुंदर स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण ने, राधा और उसके माता पिता ने निवास किया था। वो मंदिर कुछ 500-600 साल पहले हरगुलाल सेठ ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार किया गया था। एक सेकेंड रुकिए, तो उस मंदिर का निर्माण बहुत पुरातन काल से है, लेकिन उसका जो डागडोजी यानी कि जीर्णोद्धार है वो हरगुलाल बेरीवाला ने किया था। उस मंदिर में एक ऐसी जगह है, आप जैसे ऊपर चढ़ के जाएंगे ब्रह्मा जी का मंदिर है, सब लोग प्रणाम करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के सर पर हम चढ़ रहे हैं, वंदन करते हैं। उसी के पास एक स्थान है, वहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, बिल्कुल उतने साइज के हैं जितने साइज की राधा रानी के मूर्ति के चरण चिन्ह हैं। वही राधा रानी के विग्रह हैं, लाडिली लाल कहते हैं उनको, लाडिली यानी राधा रानी, लाल यानी कृष्ण। वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने उसको प्रकट किए थे। नारायण भट्ट गोस्वामी नारद जी के अवतार हैं, और उनका अवतार ऊंचे गांव में हुआ था, और ऊंचे गांव में उन्होंने रेवती और बलराम जी का विग्रह भी प्रकट किया है हींस की झाड़ी के अंदर, और वहीं पर राधा रानी के विग्रह का भी उनको आविर्भाव हुआ था, और फिर उन्होंने आके बरसाने में उसको स्थापन किया है। तो वो वहाँ पर स्थान है जहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई थी नारायण भट्ट गोस्वामी के आनंद के लिए। और श्रीजी मंदिर के पीछे नीचे जब आप जाएंगे उस स्तर पर आगे बढ़ेंगे तो आपको एक वेदी मिलेगी संगमरमर की। वो स्थान है जहाँ पर साल में 3 बार मंदिर से श्रीजी महारानी नीचे आती हैं, एक है होली, एक है राधाष्टमी और हरियाली तीज। ये 3 दिन में अपना स्थान छोड़कर वो बाहर निकल कर उतर कर उस वेदी में आती है, और हर जाति के लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि आज का दिन है, आज का दिन बरसाने में सवेरे 5 बजे राधा रानी का अभिषेक होता है अरुणोदय की बेला पर। हाँ, एक जगह लिखा है गुरुवार के दिन जन्म हुआ था, एक जगह लिखा है सोमवार के दिन, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आज के दिन वो 4 बजे शाम को उस जगह पर आती है संगमरमर की, और सब लोगों की पूजा करते हैं। उसके बाद में राधा रानी के मंदिर के पीछे आप जाएंगे तो एक स्थान है जहाँ पर राधा रानी खड़ी होकर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर नंदगांव में कृष्ण भगवान को इशारे करती है। हाँ, वो कमल की तरह ना, अभी ऐसे है, इच्छा हुई तो ऐसे हो जाता है, फिर इच्छा हुई तो ऐसे हो जाता है। कभी कमल की पंखुड़ियाँ मिट जाती है, कभी खुल जाती है, और वहाँ से सीधे नंदगांव का दर्शन होता है, और वहाँ कृष्ण पर चोटी पर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर पीछे आके खड़ी हो जाती है सिंहासन पर, और वहाँ पर इशारे होते हैं उनके। बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ पर उनके चरण चिन्ह भी वहाँ पर भी हैं। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में लाड़ी लाल जी विराजमान हैं, सांवले रंग के ठाकुर जी और गोरे रंग की राधा रानी, और उनके बाजू में ललिता विशाखा विराजमान है। और जब पुजारी आरती करता है तो पहले राधा कृष्ण की आरती करता है, फिर 90 कोण में मुड़ जाता है और एक जगह पर आरती घुमाता है, वो हमको नज़र नहीं आता है, वहाँ पर विशाखा लाडली जी विराजमान है। उसकी कहानी ऐसी है कि मुगलों के समय पर एक बार मुगलों का आतंक होने लगा, तो ऐसा चेतावनी हो गई कि अभी मुगल आएंगे बरसाने के ठाकुर जी को ले जाएंगे। तो फिर श्योपुर नाम के राजस्थान में जगह है, वहाँ पर राजा थे बहुत बड़े, भगवान के भक्त थे वो। उन्होंने सुरक्षा के लिए राधा रानी के विग्रह को अपने पास ले लिया और वहाँ पर सेवा करने का आश्वासन दिया, और मुगलों का आमंत्रण होने के पहले ही राधा रानी वहाँ से जा चुकी थी। और राधा रानी की जगह पर विशाखा देवी को लाडली जी बनाकर वहाँ पर रखा गया। तो जैसे ही मुगलों ने आक्रमण किया तो विशाखा लाडली जी ने ऐसा चमत्कार किया कि हर एक मुगल के सामने एक हिंदू सैनिक खड़ा हो गया, प्रकट हो गया हर एक के सामने, ऐसा बलदंड एकदम बड़ा, और हर एक मुगल सैनिकों का कत्ल किया गया उनके द्वारा। फिर बच्चू सिंह नाम का राजा राजस्थान से भाग के आए, उन्होंने बचे हुए राक्षसों को मतलब मार डाला, इसलिए उनका नाम पड़ा विजय लाडली जी, क्योंकि आने वाले संकट पर विशाखा देवी ने विजय प्राप्त किया। भाई दबे मैं सुबह भी बोलना बताना भूल गया, अभी तो जरूर बताना चाहिए आपको कि आज विशाखा देवी का भी जन्मदिन है और आज चंपकलता देवी का भी जन्मदिन है। विशाखा देवी महारानी की, चंपकलता देवी की, जो उनके बारे में आपको बताऊंगा जरूर, कुछ समय मिला है। तो ये जब वहां पर गई, उसके बाद में विजय लाडली ने विजय प्राप्त कराया, फिर सब संकट मिट गया। तो फिर वो सब ब्रजवासी मिलके श्योपुर गए और राजा से विनती की, राजा तब तक आसक्त हो चुका था, उन्होंने कहा कि अभी हम विग्रह नहीं देंगे, वे राजा हैं वो इसी बेचारे ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे उनके सामने, बोलते हम नहीं देंगे उनको। बड़े उदास होकर लौटते हैं, पुकारते राधा रानी लौट कर आओ। राधे को भी वहाँ पर बहुत कष्ट होता है, बोले चलो अभी घर जाना चाहिए। तो एक पुजारी जो है वो उनके साथ में जाता है, जब वो विग्रह ले जाते हैं तो वहाँ के एक पुजारी को भी साथ में, वयोवृद्ध पुजारी है, उनको ले जाते सेवा करने के लिए बरसाने के ढंग से। तो रात को वो राधा रानी उस पुजारी से बात करती है। अब ये बात करने का जो बात है ना, उसको आपको समझना चाहिए कि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो विग्रह बोलते हैं। आप ये मत समझना कि ये संगमरमर के विग्रह हैं, ऐसे खड़े हैं, कुछ हिलते नहीं बोलते नहीं, इसका भाव होगा उसको वो रोज़ अलग नज़र आएंगे, इसका भाव परिपूर्ण हो जाएगा उनसे वो बातें करेंगे, जो स्वप्न में आएंगे उनके प्रत्यक्ष बात करेंगे। कितने भक्त ऐसे हो गए हैं, महाराष्ट्र में हुए, यूपी में हुए, सब जगह हुए, ठाकुर जी के विग्रह उनसे बात करते थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सबसे विग्रह बात करते थे, क्या चाहिए बताते थे। सनातन जी को कहा कि अरे कितने दिन हमको मीठा नमक के बिना खिलाओगे, तो नमक तो डाला करो उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि अरे आज नमक मांग रहे हो, कल मिठाई मांगोगे, कहाँ से लाओगे, मैं तो फकीर हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ, जो मिल रहा है उसमें सुखी रहो। इतने प्रेम के संबंध हुआ करते थे। ठाकुर जी विग्रह से बाहर निकल कर खेलते थे, श्रीनाथ जी के विग्रह से निकल कर अपने भक्तों के साथ में खेलते थे वो। हाँ, जगन्नाथ जी का कितना स्टोरीज है, कितना साक्षी गोपाल की कहानियाँ है, कितनी कहानियाँ ऐसे जो भक्त शुद्ध होता है उनसे ठाकुर जी बात करते हैं। तो ये बोले उनको, राजा रानी बोली चलो हमको ले चलो बरसाने। बोले कैसे ले चलो आपको, मैं तो बूढ़ा हूँ। राजा ने हाँ जब वैसे एक बार जैसे वो गए ना बरसाने से पुकारने के लिए कि चलो हमको वापस करो राधा रानी को, तब से राजा ने सैनिक लगा दिए वहाँ पर, तो भरोसा नहीं कभी आगे ले जाएंगे, इसलिए सब कड़ा पहरा लगा दिया, नियम बना दिया कि रोज सुबह मेरे घर से चाबी ले जाएंगे और रोज रात को मेरे घर में चाबी जमा हो जाएगी, और पहरा ऊपर से रहेगा ही रहेगा, सब लॉक के साथ में मेरे घर पे आके मंगला के लिए चाबी ले जाएगी, ऐसा व्यवस्था कर दिया। तो राधा रानी बोल रही है मुझे ले चलो, तो बोले कैसे ले जाऊँ, सब जगह पहरा लगा हुआ है। बोले कोई डरो मत, मैं कह रही हूँ ना, जैसे मैं कह रहे वैसे करो, कोई बात नहीं। बोले सब रात को जो दर्शन शयन करा के सब मेरे अलंकार उतार दो, केवल वस्त्र रखो, और सब सब जगह पर ताले लगा दो, और जो ऊपर वाली खिड़की है उसकी चटकनी निकाल दो, मतलब उसको बंद करके रखो, चटकनी मत लगाओ, और चाबी राजा के पास सुपुर्द करो, और रात के समय बीच रात में खिड़की से खोलकर मंदिर में उतरो, मुझे उठाओ और वापस खिड़की से भाग जाओ। और रात के बाद क्या होता है, सब लॉक हो गया तो पहरेदार सो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे ही करते हैं वो, बड़े बूढ़े उनको चलने को भी नहीं हो रहा है, शक्ति भी नहीं है। रात को आते हैं खिड़की से उतरते हैं, ठाकुर जी के विग्रह को लेते हैं और भाग जाते हैं। और उस दिन उस पुजारी को ऐसा अनुभव होता है कि वो मानो हवा में उड़ रहा है, ही इज एक्चुअली फीलिंग, इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई, जमीन पाँव पर नहीं लग रहा है, हवा से मैं हवा की गति से भाग रहा हूँ। रात भर चंबल की खाई के उस तरफ था वो गांव, तो चंबल की खाई पार करके जो सुबह 4 बजते हैं तब तक भाग रहा है बूढ़ा, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, तो कैसी अजीब कृपा है। तो सुबह फिर वो जब होता है भोर का समय तो पेड़ पर लटका कर वो शागी ठाकुर जी को, राधा रानी को भोग लगाता है, आरती करता है। यहाँ पर 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बज जाते हैं तो कोई पुजारी आता ही नहीं खोलने के लिए। पहरेदार भी उठ जाते हैं, बोले आज मंदिर खोलने को आया नहीं कोई। राजा के पास पहुँच जाते, राजा भी चिंतित है, बोले क्या हो गया, बोले कोई आया ही नहीं आज, देखो क्या हो गया है। तो खिड़की खुली है और राधा रानी के विग्रह गायब है, ठाकुर जी भी गायब है। अच्छा घोड़े को भेज, जाओ भागो दौड़ो, देखो किस बरसाने की दिशा में गया होगा, पकड़ो उसको, पकड़ के लेके आओ कैद करके। तो ये घोड़े भागते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो देख रहे हैं कि चंबल की खाई के उस तरफ हमारे महाराज जी पूजा कर रहे हैं राधा रानी का, बड़े प्रेम से पकड़ते, हे पुजारी रुको, कहाँ जा रहे हो। तो पुजारी कहते, राधा रानी मैंने आपको कहा था मेरा जीवित संकट में आएगा, अभी देखो मैंने कहा था आपको, मैं अभी आपको भी ले जाएंगे, मुझे भी मार देंगे, मैं तो क्या करूंगा, मैं बूढ़ा हूं। तो राजा रानी कहता, तू डर मत, मुझे तुरंत गोद में ले लो और खाई में कूद जाओ। खाई में कूद जाओ एकदम बिंदास होकर। बोले कैसे कूद जाओ, बोले कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो जब वो ठाकुर जी का वचन है ना, वो राधा रानी का वचन है, उसका विश्वास है, जैसे भाग के ले गया वैसे ही लेकर कूदता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि रुई पर कूद रहा हो, कुछ भी दर्द नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से कूदता है, वो भी जल के अंदर, और जल भी कैसा एकदम एड़ी तक, घुटने से भी नीचे आराम से चल के जा रहा है। और लोग वहां पे देख रहे हैं, सैनिक लोग, अरे बूढ़ा आदमी पागल हो गया, चंबल खाई में कूद गया, जा रहा है वो। फिर वो घोड़े दौड़ाते हैं और देख रहे हैं कि वो घुटने से नीचे पानी, हम भी जा सकते हैं। तो जब वो जाते हैं तो इतना गहरा पानी हो जाता है कि घोड़े भी तैयार नहीं होते आगे जाने के लिए, घोड़े भी बहुत चिल्लाते, ऊपर उल्टे उल्टे जाने लगते, और सब उनकी आंखों के सामने पुजारी जो है आराम से चल के जा रहा है, और उनके पास इतना गहरा पानी है, उसके पास कुछ पानी ही नहीं है, आराम से वो राजस्थान की सीमा पार करके बरसाने की हद में प्रवेश करता है और निश्चिंत हो जाता है, अभी तो यहाँ की उनकी हद समाप्त हो जाती है, हम तो अभी अपने राज्य में आ गए, आके बसा देते राजा रानी को। तब जाकर विजय लाडली जी को फिर वो काटकोद में रखा है और राजा रानी ने अपना स्थान वापस ले लिया है। तो इसलिए विजय लाडली जी के इस लीला के उपलक्ष में राधा रानी वापस आ गई, तो राधा रानी की पूजा करते हैं और विजय लाडली जी विशाखा देवी का भी पूजा करते हैं, ये इसका इतिहास है। इस तरह से बरसाने का जो क्षेत्र है वो अनंत लीला से भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया माहेश्वरी सर में ब्रजेश्वर महादेव का स्थान है, वहाँ पर वो गोपी बनकर सिंगार करके लीला करने के लिए आगे चले गए। सांकरी कोर में दान लीला होती है, साकरी कोर में एक तरफ से राधा रानी गोपियाँ सब मटका लेकर आते हैं और नंदगांव से कृष्ण भगवान डंडा लेकर आते हैं, उनको रोक लेते हैं, बोले आप हमारे एरिया से गुजर रहे हो और यहाँ से गुजर के मथुरा में जाकर उसको बेचते हो, पैसे बनाते हो और हमको कुछ देते नहीं हो, आपका हाथ, आपके पैर, आपके गर्दन, आपका मुकमल, आपके सुंदर केश, आपके नयन, इन सारों के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि तो आपके शरीर के सारे अवयव हमारे एरिया से गुजर रहे। तो ललिता जी, राधा रानी बहुत भोली है, वो तो बहुत डर जाती है, ललिता जी बहुत तेज है, उनसे बड़ी भी हैं, उनकी रक्षक भी हैं, उनकी गुरु भी हैं, तुरंत सामने आती है, बोले देखो ये राधा रानी का क्षेत्र है। अरे तुमको कुछ पता नहीं है अभी, तुम तो बालक हो, ये ब्रजभानु बाबा है ना, ये सबके मालिक थे पहले और तुम्हारे पिता से उनकी मित्रता थी, इसलिए कुछ हिस्सा प्रेम वश उन्होंने दान में दे दिया, तब जाके तुम्हारे पिता राजा बन गए, अब तो तुम राजपुत्र बनाने का टिमकी बना रहे हो, ये सब किराए का राज, राज्य राज्य तुमको मिला हुआ है, तुम किराए के युवराज हो, ये सब हमारे श्री जी का क्षेत्र है, ये सब इनके पिताजी की कृपा से तुम्हारे पिता को मिला है और तुम इतना रोब जमा रहे हो उसके ऊपर, तुमको टैक्स देना चाहिए कि तुम हमारे धाम में आकर खड़े हो, तुम्हारे हर एक अंग के लिए टैक्स हमको लेना चाहिए, हटो यहाँ से। तो फिर बहस जारी होती है, वो थोड़े छोड़ेंगे ठाकुर जी, वो तो बड़े 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 नटखट हैं, वो फिर नोक झोंक चलती रहती है, पता है नोक झोंक क्या होती है, नोक और झोंक। ये कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर ये और कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेंगे। आज भी समाज होता है नंदगांव में और बरसाने में, और बरसाने के नंदगांव के लोग साथ साथ बैठे हैं अपोजिट, और गीत में नोकझोंक होती है उनकी। वो कहेंगे तुम्हारा बूढ़ा नंद बाबा, हाँ इतने बुढ़ापे में उसको इतना दिल आया और इतने बुढ़ापे में बालक पैदा किया, तो वो भी कुछ बोलेंगे ये भी कुछ बोलेंगे। और एक इतना काला कलूटा तुम्हारा बालक, तो ये कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे ऐसे गीत में। बहुत सुंदर बात होती है, वो प्रेम की बातें होती। तो बहुत बहस के बाद में फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि बस हो गया अभी, और मटका तोड़ देते हैं, राधा रानी का मटका तोड़ देते हैं। अभी भी वहाँ पर वो स्थान है बाय द वे जहाँ पर राधा रानी के सर से टूटकर मटका गिरा था, वहाँ की शिला अभी भी चिकनी है और गोले रंग की है, यहाँ पर मक्खन लगा हुआ है, इट्स वेरी स्मूथ एंड शाइनिंग। और कई लीला होती है, रोज लीला होती है वहाँ पर, एक लीला नहीं हुई है, अनंत लीला होती है। किस दिन कृष्ण भगवान और ग्वाल बाल राधा रानी के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो किस दिन गोपियाँ और राधा रानी और ललिता जी कृष्ण पर हावी हो जाते हैं। तो एक बार ऐसे उन्होंने ट्रिक किया कि उनको बोला अरे तुम लोग इतना को बहस करते हो, ले लो जो लेना ले लो। उस आश्चर्य हो गया, अरे आज तो सूरज कहाँ से निकला है, रोज बहस करनी पड़ती फिर प्राप्त होता है, आज तो आते ही तुरंत ले रहे हैं, क्या बात क्या है। मतलब कोई सोचना वो ज़्यादा टाइम पास मत करो, तुरंत जो बोलते हो करो, ले लो उसको। तो राधा रानी और गोपियाँ कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमारा जो मक्खन है ना वो बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग उसको, इतना मूल्यवान है, अब हाथ से लोगे तो सब गिर जाएगा, फिर वो पत्थर पे गिरेगा, फिर उसको व्यर्थ हो जाएगा ना वो, अब जाओ दोने लेकर आओ दोने, है ना। उस जमाने में बरसाने में अभी भी हमने दर्शन किया 25 साल पहले, कदम के पेड़ पर पत्ते दोने बनकर ही निकलते थे, और वो तोड़कर उस दोने में वन भोजन करते थे सब ग्वाल वाल मिलकर, नेचुरल कप्स ट्री के अंदर। हाँ सब लोग गए धोनी कुंड पर, धोनी कुंड पर बरसाने में ब्रज ये जो ब्रजभानु बाबा हैं उनकी जो गायें हैं उनका दूध निकालते थे, तो एक नाम था उसका दोहनी कुंड जहाँ पर गायों को धोते थे वो दूध निकालते थे, और एक है धोनी कुंड जहाँ पर पेड़ पर दोने निकलते थे। तो वहाँ पर ये ग्वाल बाल भाग भाग के गए, सब लोग गए और वो इतने मग्न हो गए कि आप उनको बिना साया बिना प्रयास मक्खन मिलेगा, तो इतनी खुशी से दोने तोड़ रहे हैं, सब गोपियाँ पीछे भागती उनको उसकी चोटियों को पत्थर से और पेड़ की शाखाओं से बांध देती, सब लोग अटक जाते एकदम ऐसे। और वो बोलेगा, वो सोचता है कि ये मुझे छुड़ाएगा, वो सोच रहा है वो छुड़ाएगा, और सब लोग एक दूसरे को पुकार रहे हैं, कोई पुकारने सुनने से कुछ नहीं हो रहा है, तो सब लोग कृष्ण बलराम को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रज में संकट आता है तो सब जगह कृष्ण कृष्ण महाबाहो, सब मिलकर अगासुर आया थेनुकासुर आया, सब लोग कृष्ण बलराम को पुकारते हैं, और तुरंत कृष्ण बलराम जो है बड़े ऐड से आते हैं और संकट का निवारण कर देते हैं। उनको लगा यहाँ पर भी आएंगे, सब पुकार रहे हैं कृष्ण कृष्ण बलराम जी बचाओ हमें, हम अटक गए हैं, तो आशा है उनकी कि आएंगे और छुड़ाएंगे। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ सुनते हैं, ग्वाल बालो सुदामा सुदामा अर्जुन उज्जवल बचाओ बचाओ। बोले कौन मारा है? कृष्ण बलराम स्वयं पुकार रहे हैं। अरे अजीब बात है, यहाँ पर जिनको सहारा देना चाहिए वही पुकार रहे हैं असहाय होकर। तो यहाँ तक हमारे गुरुदेव ने कहानी बताई और रुक गए वो, फिर सब लोगों ने सांकरे को और पार किया, एक एक करके नीचे आके एकत्र हो गए। फिर महाराज जी बोले फिर बताओ इसका कारण क्या है, यहाँ पर कृष्ण भगवान और बलराम भी असहाय होकर क्यों पुकार रहे हैं? तो यहाँ पर राधा रानी का प्रभाव है, ये राधा रानी का क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयं भगवान भी असहाय हो जाते हैं उनके प्रभाव से, इसलिए सब दुनिया भर में सब ब्रज में सबकी सहायता करते हैं, उद्धारक बन के सबका उद्धार भी करते हैं, सबको मदद करते हैं, और यहाँ पर आकर खुद असहाय हो जाते हैं। तो राधा रानी और सब गोपियाँ ऐसे उंगली उठाकर बोलते अभी दोबारा कभी आओगे ना, याद रखना चुटिया को परमानेंट बांध देंगे, नहीं छोड़ो छोड़ो हमको छुड़वा दो। बोले एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, हाँ वो शर्त क्या है? कल हमारी श्री जी आपका रूप धारण करके ग्वाल बाल बनकर आएंगे, हाथ में डंडा लेकर पेटा बांध के आएंगे, हम सब लोग ग्वाल बाल बनकर आएंगे, और आप स्वयं गोपी बनकर आना, सब ग्वाल बाल सखी बनकर आना, हाँ चुंदरी फहरा पहनकर आना, सर में मटका पहन के आना, अपने हाथ से घर से मटका में दही भरकर दूध भरकर मक्खन भरकर लेके आना, और हम आपको रोकेंगे, हम आपका मटका तोड़ेंगे और सब खाएंगे उसके अंदर, मंजूर? बोला हाँ मंजूर। तो सबकी चुटियाँ छोड़ देते हैं, सबको रिहा कर देते हैं, बेचारे अगले दिन सब लोग आते हैं, सखी बनकर आते हैं डोल डोल के, श्यामा सखी बहुत सुंदर नीली नीली सी, माता ने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया उसका, अच्छे अलंकार पहनाए, बड़ी लंबी चुटियाँ बनाई है, हाँ बड़ा अच्छा मटका रत्नों से लगा हुआ मक्खन भर के दिया है और आराम से चुम चुम करके आ रही है ध्वज गुरु बांध के, और यहाँ से राधा रानी डंडा लेकर आ रही है, रोकते हैं उनको, टैक्स दो, सब लोग उनका मटका तोड़कर मक्खन खा जाते हैं। उस समय मैंने आपको बताया सुबह कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था ना दो उद्देश्य से, इनके चरणों के रज मिले, उनकी लीलाओं का दर्शन हो जाए। तो जब भी ये लीला हुआ करती थी रोज, तब ब्रह्मा जी के सार चार सर जो थे वो ऐसे मक्खन की तरह मुलायम हो जाते थे अति आनंद की भावना से, इन एक्सटसी द माउंटेन यूज टू बिकम लाइक मक्खन, लाइक बटर, सॉफ्ट लाइक बटर, पत्थर होता ना, सख्त होता ना बहुत पत्थर, तो एकदम मुलायम बन जाते थे एक भाव से। और दूसरा भाव क्या उनका, एक तो उनको आनंद हो रहा है इसलिए मुलायम हो जा रहे हैं, दूसरा भाव क्या है कि राधा कृष्ण के और सखाओं सखियों के चरणों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इसलिए मुलायम बन जाते थे। उसमें क्या हो रहा है, जब राधा रानी श्यामा सखी बने हुए कृष्ण के मटके को तोड़ देती है, उसके फेटों को चुरा देती है, उनका फेटा जो है लंबा हो जाता है और उसको कैदी बनाकर ले जाती है उसको, तो उसका जो फेटा है ना वो लंबा, उसकी दूरी ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है और वो घसीटते हुए उसको ले जा रहे हैं, तो वो जो फेटा है उनका जो घसीटा जा रहा है उसका निशान वहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पत्थर मुलायम है ना ऑलरेडी, तो वहाँ से घसीटते हुए जाता है तो पत्थर मुलायम में उसका निशान बन जाता है। और जहाँ पर ठाकुर जी ने पहले मटकी तोड़कर खाया था और अपने हाथ पोंछ दिए थे, वो उस हाथ के निशान भी वहाँ पर है, जहाँ मटकी टूट गई थी उसके निशान भी वहाँ पर है, तो फेटा जो खींच कर ले गए थे फेटे का भी निशान है, एकदम कैदी बनकर गुलाम बनकर चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। ये सागरिक और किला है, वहाँ पर राधा रानी का जो पहाड़ है वो गोरे रंग का है, उसको विष्णु गोरे रंग का पर्वत है वो, और इस पर्वत इस साइड का पर्वत जो है वो सांवले रंग का है, आप जाके देख सकते हैं सब बातें, दोनों ऐसे पिघल जाते हैं। और मधुमंगल की छतरी भी है, राधा रानी की छतरी है, कृष्ण की छतरी है और मधुमंगल की छतरी है, सुंदर स्थान है वहाँ पर। तो और गहवर कुंड की जिला ऐसी है कि गहवर कुंड में वो ब्रह्मा जी के चार सर पर्वत बन के खड़े हैं, और ब्रह्मा जी का जो नाभि है वो गहवर कुंड है, जैसे अपने घरों में होता ना वास्तु में एक नाभि होती है वास्तु की, उसको आप ऊपर छोड़ देते हैं जगह, वैसे बरसाने की जो ब्रह्मा जी की नाभि है वो गहवर कुंड है, बहुत सुंदर कुंड राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया, आप जाके देखेंगे ना इतना आनंद आएगा आपको, वहाँ पर इतना शांत इतना सुंदर, हर प्रकार के पवित्र वृक्ष वहाँ पर हैं, और वहाँ पर राधा रानी हर रोज अपने 64 गिने चुने सखियों के साथ में मिलकर स्नान करती है रोज। जब वो वहाँ पर स्नान करती है तो ग्वाल बाल मोरकुटी से उन पर लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, और उसी स्थान पर उन्होंने एक बार प्लान बनाया था कि हम सभी ग्वाल बालों को पकड़ेंगे। हाँ कितना समय हमारे पास है, 15 मिनट ना, सवानों को बंद करना है, चलो कोई बात नहीं एकदम शॉर्ट में बता देंगे आपको, लेकिन बताना ज़रूरी है गहवर कुंड में क्या हुआ था, ये तो लड्डू फेंके थे उन्होंने ऊपर से, ऊपर मोरकुटी है नीचे सब गहवर कुंड है, तो एक बार उन्होंने सोचा कि ये जो कृष्ण है वो सब हर बार अनेक चालाकियाँ करके हमारे मक्खन को चुराते हैं, कभी भी रंगे हाथ नहीं मिलते हैं, बार बार यशोदा मैया बोलते हैं रंगे हाथ लेके आओ रंगे हाथ लेके आओ रंगे हाथ लेके आओ, तो एक बार सब लोग सब दरवाजे बंद करके एक ही दरवाज़ा खुला रखते हैं, मटकियों को नीचे करते हैं और सब झाड़ियों में छुप जाते हैं और सब प्लानिंग बनाते हैं किसको किसको पकड़ना है, एन मौके पे जब पकड़ने का समय आएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए मैं किसको पकड़ूँ, तो आपका जिसको पकड़ना है वो फिक्स है, ये सखी तुमको कृष्ण को पकड़ना है, सखी तुमको बलराम को पकड़ना है, सखी मधुमंगल को पकड़ना है, सखी अर्जुन को पकड़ना है, सखी उज्ज्वल को पकड़ना है, ऐसा सब उनका पेयर्स हो जाता है और सब लोग छुप जाते हैं कि उनका एक ध्यान उसी पर है जिसको पकड़ना है। कुछ देर बाद कृष्ण आते हैं, देखते बहुत मटकियाँ नीचे झुकी हुई हैं आज क्या बात है, बड़े आनंद से खाने लगते हैं उसको, जैसे ही खाने लगते हैं तो तुरंत सारी गोपियाँ जो झपक पड़ती हैं उनके ऊपर, एक एक गोपी एक एक गोपा को पकड़ती है और पीटने लगती है मारने लगती है, लेकिन गोपी बड़ी क्या है ना उनका लीला बहुत सुंदर है, डंडे से पीटने लगती है, तो ये ग्वाल बाल भी इतने चतुर रहते हैं वो छूट जाते हैं उनके हाथ से, सब दरवाजे बंद, तो दरवाजा खुला था उस पर सब गोपियाँ अंदर आ रही है तो वो भी बंद, तो ऊपर से खिड़की खुली है तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर घोड़ा करके खिड़की से भाग रहे हैं सब लोग वन बाय वन, हाँ इतने तेजी से भाग रहे गोपियों में देखते अरे क्या पकड़ा हुआ अभी तो क्या गए कहाँ निकल गए सब और सब लोग जो ऊपर जा चुके हैं वो नीचे वालों को खींच रहे हैं खिड़की से बाहर, सब ऐसे मतलब जो ऊपर पहुंच चुके हैं वो खिड़की से सब लोग खींच के प्रिया कर रहे हैं, सब लोग भाग जाते हैं, सब गोपियां देखते रहते, इतना बड़ा प्लानिंग किया था सब फेल हो गया। तो एक लड़का जो है ना वो बच जाता है, कारण क्या उसका, उसका पेट इतना बड़ा है खिड़की भी छोटी हो गई, खिड़की पेट से छोटी, पेट खिड़की से बड़ा, पैर नीचे, दो हाथ खिड़की के बाहर और ग्वाल बाल खींच रहे ऊपर से, नीचे से गोपियां खींच रही है। हाँ, एक तो खिड़की का प्रॉब्लम, दूसरा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है ना, वो ऊपर से उल्टा खींच रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर खींच रहे हैं, वो नीचे खींच रहे हैं और ऊपर से खिड़की बड़ी, पेट भी अंदर। तो फिर वो बेचारा मधुमंगल ब्राह्मण का बालक ग्वाल बाल नीचे गिर जाता है, तो सारी गोपियां मिलकर, सब मिलकर उसको इतना पीटती है, इतना पीटती है, जोरदार पीटती है, बुरे शब्द बोलती है, पीटती है, और वो पुकार रहा है कृष्णा श्याम बलराम जी दाऊ जी महाराज बचाओ बचाओ, और वो कह रहे मधुमंगल भागो भागो भागो, उनकी भागो भागो की आवाज भी कम कम होते जा रही, क्योंकि वो दूर जा रहे ना, तो यहां पुकारे तो जोर से आ रही, वहां आगे जाके भाग के पुकारे तो कम आ रही, तो और कम कम आवाज नष्ट हो गई। फिर पुकार रहे कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, तो कृष्णा बलराम को लगता है अरे बेचारा मधुमंगल अकेला रह गया, कई बार बेचारा अकेला बच जाता है क्योंकि मोटा है, लड्डू खाता है, पेट बड़ा है उसका, भाग नहीं सकता है हमारे जैसा, नहीं उसको बचाना चाहिए, लेकिन बचाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम दौड़ के वापस आ जाते हैं और ऐसा रोब जमाते हैं, आप गोपियों को शर्म नहीं आती है, सांदीपनी का पुत्र है ये, ब्राह्मण का बालक है, पता है जनेऊ को हाथ लगाएगा तोड़ देगा तो उतना शाप देगा, आप सबका विवाह सात सात बुढ़ों से होगा, जिसकी सात पत्नियां पहले से है ऐसे बुढ़े से सबका विवाह हो जाएगा, ऐसा वो शाप देगा तो क्या होगा। गोपियां भी भोली बेचारी एकदम तुरंत मान जाती है, हाँ ऐसा हो सकता है, एकदम रोना मारना बंद कर देती है, बोले क्या करें अभी इतना अपराध तो कर दिया है, बोले मांगो उसी से पूछो क्या करना चाहिए, तब तक ये अपना अब आएगा मजा, अब तक हम अकेले थे, हमारे भैया आ गए हैं कनुआ और बलुआ, क्या करें, बोले सब लोग अपने अपने घर जाओ, बहुत बढ़िया व्यंजन लड्डू बना के लेके आओ, लड्डू बहुत पसंद है, सब लोग डर जाते हैं, बोले चलो अच्छा मौका मिल रहा है पश्चाताप करने का, पाप से मुक्त होने का, सब घर गए अपने हाथ से व्यंजन लड्डू बनाए अलग अलग प्रकार के, सोच सकते हैं कितनी गोपियां हैं कितने लड्डू बने होंगे, हाँ उनको नीचे लेके आए बड़े सम्मान के साथ में, वो घेवर कुंड के पास में इतना बड़ा आसन बनाया सिंहासन बहुत सुंदर, बहुत अगरबत्ती दीपक जलाया, उनकी पूजा किया, उन्होंने आरती उतारी उनकी, उनके लिए गीत गाए, कोई वीणा बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, ब्राह्मण को रिझाना ना, अभी ब्राह्मण पसंद करना है, तो साफ देगा तो कैसे चलेगा, सब आरती उरती उतारा, बोला अभी खाओ, मन भोग लगाया उनको बहुत बढ़िया से लड्डू खाए, हाँ और वहाँ से फिर अपने घर आनंद से ऐड से चले गए, सब लोग आशीर्वाद दिया, सबका विवाह कृष्ण से हुआ, चिंता जिला भी गेवरकुंड के पास हुई है। ऐसा रमणीक स्थान है बरसाना, यहाँ पर श्री जी महारानी बड़ी कृपा करती है, उसी जंगल्स में गुजरते हुए हमारे गुरु महाराज का जो किताब है ना जर्नी होम अनोखा सफर तुषार्थ पथिक, उसी क्षेत्र में गुरु महाराज को बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हुई थी आध्यात्मिक, और इसी मान मंदिर पे वो रहे थे 6 महीने तक, उस जमाने में डकैत रहते थे वहाँ पर बरसाने में और अपना सामान लूट कर वहाँ लाते थे, बहुत भयंकर घटनाएं वहाँ पर हुई है। हाँ धाम जो है ना वो आसान नहीं है रहना, कथाएं बहुत अच्छी लगती है सुनने के लिए, बहुत मधुर लगती है, यात्रा भी बहुत मधुर लगती है, कोई 4 दिन रहना है वहाँ पर 10 दिन रहना है, हाँ लेकिन वहाँ पर निवास करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कई प्रकार के संकट आते हैं, वातावरण हवामान तापमान ऊपर नीचे होता है, ठंड के समय बहुत भयंकर ठंड गिरती है, गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी होती है, और जब वर्षा जब गिरती है तो तूफानी वर्षा गिरती है, कभी बहुत कम गिरती है लेकिन जब गिरती है तो इतनी वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है वो अपने धाम को ऐसे रखते हैं हमेशा, ताकि जो सच में हृदय से सच्चे दिल के भक्त हैं वही इसको सहन करके फिर भी वहाँ रहेंगे और निवास करेंगे और भजन करेंगे, जो ऐसे शहर के ऐशो आराम से आसक्त हो गए वो भाग जाएंगे वहाँ से तुरंत, बोले 2 दिन के लिए रहे ठीक है भाई गर्मी थी ठीक है ऐसे रूम में रहेंगे भाग जाएंगे बाद में, लेकिन जो निवास करते हैं वहाँ पर उनके लिए बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं वहां पर होती है ना, वो तो वो उसके परे हैं। ये गर्मी सर्दी तो बाहर की है, फिर भी चलो गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, बिजली नहीं आती है, ये सब बाहर के कष्ट है। लेकिन ऐसे ऐसी घटनाएं होती है वहां पर ना, आदमी भाग जाता है, बिल्कुल परेशान होकर नहीं रहना यहाँ पर। किसी को 3 दिन बाद टाइफाइड होता है, हाँ किसी को 10 लग जाते हैं, क्या क्या होता है एकदम, मतलब बोलते ना हिंदी में पूरा हिला देते हैं भगवान वहाँ पर अंदर से, भक्त को जो तय करके आया हुआ है। ये सब कसौटियाँ पार करेंगे ना, फिर जाकर उसको ब्रज का आनंद प्राप्त होने लगता है, फिर राजा रानी की कृपा का अनुभव उसको होने लगता है। लेकिन शुरू शुरू में बहुत सारा कसौटियाँ होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो कसौटियाँ होती है वो बम्बई जैसे शहरों में अनेक सालों में जितना शुद्धिकरण नहीं हो सकता है, वो कुछ दिन में वहाँ हो जाता है। मतलब वो होलसेल मामला है, रिटेल मामला नहीं है, है? आप लोग बिजनेस करते हो पता होगा ना आपको, थोक माल कहाँ मिलता है, वहाँ जाते हैं आप एक साथ में खरीद लेते हैं हजारों टन माल, फिर ग्राहक जो है 2-2 किलो खरीदता है, लेकिन वो जो हजारों टन में खरीदता है उसका एक साथ में काम हो जाता है। वैसे भक्ति में जीवन में जो हम लोग पाप नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, मुक्त होने का, निवृत्त होने का, वो वहाँ पर एकदम होलसेल में होता है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, धाम में एक ही साथ भगवान अपना सारा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नष्ट कर देते हैं। तो ये बरसाना जो है वो श्री जी का निज धाम है, भगवान भी वहाँ पर कृपा चाहते हैं। हम सबको भी राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए कि आपका चरणों में हमको निवास मिले, आपके इष्ट की कृपा हमको प्राप्त हो जाए। शुरू में भी कहा था मैंने कि राधा रानी के कृपा की याचना करने के लिए हमको आना चाहिए। राधा रानी की कृपा जो है वो सब जीव के लिए आवश्यक हैं, इसलिए हम आज के राधाअष्टमी के दिन पर सबके लिए शुभकामना देते हैं कि आप सब लोग राधा रानी की कृपा के प्राप्त हो जाएं। और पुकारने को मत चुकना, बस मुझे आपको सबको एक ही विनती है, पुकारो, हृदय से पुकारो, जय जय श्री राधे। बरसाना धाम की जय, राधा रानी की जय, हरे कृष्ण।